मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 26 दिसंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 15 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सुरेंद्र सिंह, आप फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, लवदीप कौर भटिंडा पंजाब से, इमरान हुसैन मोतिहारी बिहार से, लखन सिंह जयपुर राजस्थान से, भानु प्रताप सिंह चंदौली उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार तिवारी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, राकेश लखेरा थानागाजी अलवर राजस्थान से, राखी कुमारी नवादा न्यू दिल्ली से, निकिता तोमर इंदौर मध्य प्रदेश से, सुरेश मंडी दाबवाली हरियाणा से, आदित्य दिव्य सिंह वनस्थली राजस्थान से, मिथिलेश कुमार नवादा बिहार से, मनीष पुंडे बैतूल मध्य प्रदेश से, चेतन प्रकाश वर्मा अलवर राजस्थान से, प्रशांत अग्रवाल हाथरस उत्तर प्रदेश से। तो सुरेंद्र, लवदीप, इमरान, लखन, भानु प्रताप, राजेश, राकेश, राखी, निकिता, सुरेश, आदित्या, मिथिलेश, मनीष, चेतन और प्रशांत, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के इस क्रम के बाद आइए अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर। फ्रेंड्स, आपने कल के एआईआर की न्यूज सुनी होगी। कल के एआईआर के न्यूज में हमें 3 टॉपिक मिलते हैं जिस पर थोड़ी सी बात की जा सकती है, और उसमें से 1-2 टॉपिक पर मैं थोड़ी सी विस्तार से बात करूंगा। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन के लिए उपलब्ध करा रहा है, वह है दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। आपने इसे न्यूज में सुना कि, मतलब यह अफवाह उड़ी थी 2 दिन पहले कि, 1 दिन पहले या जो भी कह लीजिए, अफवाह थी या अखबारों में जिस तरह से भी रिपोर्ट हुई हो कि प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर छूट जो दी जाती है टैक्स की, वो नहीं लगेगी, मतलब वो अब वापस ले ली जाएगी। इसको हमारे वित्त मंत्री जी ने खारिज किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मित्रों, अब सवाल उठता है कि वित्त मंत्री जी ने क्यों खारिज किया, पूंजीगत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ क्या होता है, क्यों दिया जाता है, इसे आप जाने। अब जो सिविल सर्विस की तैयारी है फ्रेंड्स, अब वह इसी पैटर्न की तैयारी हो गई है, और मुझे लगता है कि मेरे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद मैं बार बार आप लोगों को याद इसलिए दिलाता हूं मित्रों, कि कहीं आप भूल न जाएं, फिर से कहीं सिलेबस और किताबों के जंगल में खो न जाएं। और इसलिए भी मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स इस डेली ऑडियो से चूंकि जुड़ते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके प्रति भी मेरा धर्म बनता है कि मैं उन्हें सतर्क करता रहूं, या जो भी मैं जानता हूं वह बताता रहूं। और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की तैयारी तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर होने लगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इकोनॉमिक्स को जानना ही नहीं है, एक बात तो आपको इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स की जो बेसिक चीजें हैं, जिसे हम कह लीजिए कि एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, एक मूलभूत इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो जान लीजिए आप, बस बात खत्म हो गई। और इसके बाद फिर जो घटनाएं घट रही हैं, जो करंट में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी चीजें चर्चा में आ रही हैं, आपको उन्हें पकड़कर अपनी तैयारी करनी होगी। दोस्तों, जैसे कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, तो अब आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि नहीं, ये एक टॉपिक हो गया। लेकिन ये जो टॉपिक है, याद रखिए कि ये साल भर के लिए है, मतलब आप इसे अभी के जो प्रीलिम्स होने जा रहे हैं वहां के लिए ले सकते हैं, कि इस पर प्री में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और फिर मेंस के लिए भी आप ले सकते हैं। अक्टूबर में जो मेंस हो गए नेक्स्ट ईयर, तो उसमें भी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के बारे में पूछे जा सकते हैं, और इसमें आपको एक्सपर्टीज नहीं हासिल करनी है, एक सामान्य जो जानकारी होनी चाहिए उतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। दोस्तों, जैसे कि अब मैं आपको थोड़ी सी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के बारे में बताना चाहूंगा। ज्यादातर होता है ना कि स्टूडेंट जैसे मैथ्स से घबराने लगते हैं, अरे बाप रे गणित है, ठीक है, उससे घबराने वालों की संख्या ज्यादा है। मैंने देखा कि लोग इसी तरह से इकोनॉमिक्स से भी घबराते हैं, अरे बाप रे इकोनॉमिक्स है, उनको लगता है कि इकोनॉमिक्स भी जो है ना एक तरह से मैथ्स का ही छोटा भाई है। ऐसा है नहीं मित्रों, सच पूछे तो इकोनॉमिक्स तो बेसिकली हमारे रोजाना के जीवन का हिस्सा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को तो हम एक्शन में लाते ही लाते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा बाजार वाजार जाते हो तो। हाँ, अगर बाजार जाने से आप बचे हुए हैं तो ये बात जरूर है कि फिर इकोनॉमिक्स आपके लिए थोड़ा कठिन विषय तो हो जाएगा। अब आप देखिए किसके नाम पर जाइए, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक, फिर पूंजीगत कैपिटल लाभ। तो ये पूंजी क्या होती है आपको ये समझना पड़ेगा कि एक अब इकोनॉमिक टर्म्स में पूंजी क्या होती है, क्योंकि हम इकोनॉमिक टर्म्स की बात कर रहे हैं, हम लीगल टर्म्स की बात कर रहे हैं, हम सरकारी तंत्र के हिसाब से अब हम बात कर रहे हैं। वैसे बोलचाल की भाषा में हम मेरे पास मान लीजिए कि कैश है, मान लीजिए कि मेरे पास 1,00,000 रुपए कैश है, चाहे मैं घर में है या बैंक अकाउंट में है, तो लोग कहते हैं कि ये मेरी पूंजी है। बोलचाल की भाषा में तो हम कहते हैं ना कि ये मेरी पूंजी है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में जो यहां हम पूंजीगत लाभ की बात कर रहे हैं वो पूंजी नहीं है, राइट। इकोनॉमिक टर्म्स में जो यहां दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की जो बात कही गई है मित्र, जब आप किताब में देखेंगे तो आपको दो तरह के अंतर दिखाई देंगे। पहला तो वह जिस पूंजी पर, पूंजी का मतलब है संपत्ति, यहां जो पूंजी का मतलब है वो संपत्ति है, कैश से उसका मतलब नहीं है, टोटल संपत्ति से भी मतलब नहीं है। यहां पूंजी का मतलब है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां जो मतलब है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूंजी है यहां। अब आप देखिए कि उस इन्वेस्टमेंट को वो कैसे देख रही है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मामला टेक्निकल है और यहीं पर आपको प्रीलिम्स में वो फंसाने की उलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने शेयर खरीदे, सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ये सब खरीदे, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट के आपने यूनिट्स खरीद लिए, तो आपने पैसा दिया उसके बदले में आपने शेयर खरीद लिए, तो आपने देखा कि शेयर खरीद लिए तो शेयर के वो पैसा कहां गया, वो शेयर इनफैक्ट कंपनी के शेयर खरीदे तो वो पैसा कंपनी के पास चला गया, तो कंपनी अब उस पैसे का उपयोग करेगी। तो जैसे कंपनी अपना पैसा कंपनी में लगा करके उसका उपयोग कर रही है, तो अब कंपनी आपका भी पैसा लगा करके उसका उपयोग करेगी, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हुआ, राइट। आपने शेयर खरीदे। जो पूंजीगत लाभ का मतलब है टैक्स में लाभ, देखिए सरकार इनकम टैक्स लेती है, जो भी आपकी इनकम होगी उस पर सरकार टैक्स लेगी, ठीक है। तो अगर मैंने शेयर खरीदे हैं तो शेयर में भी अगर मुझे लाभ हो रहा है, मैं तो प्रॉफिट के लिए ही मैंने शेयर खरीदे हैं ना, तो शेयर में मुझे जो फायदा होगा मुझे उस पर भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो अब यहां क्या करें, पूंजीगत लाभ गेन आपको दे रहे हैं, ये वाला लाभ नहीं है, प्रॉफिट वाला लाभ नहीं है, याद रखिए। इसके लिए अंग्रेजी का जो शब्द है वो है गेन, आपने उसमें क्या हासिल किया। तो आपने शेयर खरीदे, सरकार चाहती है कि लोग शेयर खरीदें, लेकिन सोच समझ कर खरीदे, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा है तो फालतू के पड़ा हुआ है। कोई भी अर्थव्यवस्था तब जीवंत होती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, जिस व्यवस्था में लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा का प्रचलन होता है, पैसा प्रवाह में होता है, इसीलिए इसका नाम है करेंसी, करेंट, नदी का प्रवाह, उसको हम करेंट कहते हैं, करेंट जो बह रहा हो, तो पैसा बहते रहना चाहिए। बहते रहने का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही उड़ाते रहे, बहते रहने का मतलब वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो सरकार इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना चाहती है कि लोग अपने पैसे को मार्केट में लगाएं, तो शेयर मार्केट में जो आप पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट है। अब सरकार कहती है कि अगर आपने अपने लगाए हुए पैसे को 1 साल तक अपने पास रख लिया, उस शेयर को बेचा नहीं, मतलब उस शेयर को आपने 1 साल के बाद बेचा, तो उस पर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट पर टैक्स नहीं होगा, ये पूंजीगत लाभ हो गया। अब आप सोचिए कि टैक्स की जो छूट दी है सरकार ने वो क्यों दी है, इसलिए दी है ताकि आप ऐसा ना करें कि फटाफट शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। देखिए जब आप फटाफट खरीदते हैं बेचते हैं खरीदते हैं, आज खरीदा कल बेच दिया या दो महीने में बेच दिया या चार महीने में बेच दिया, तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग करना। शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट के जरिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप साल भर तक रोक लेते हैं तो सरकार मान करके चलती है कि यार ये इन्वेस्टर है, ये ट्रेडर नहीं है, ये इन्वेस्टर है। तो साल भर तक आपने पैसा रोके रखा, एक तो आपने इन्वेस्टमेंट को रोके रखा, दूसरा है कि इससे शेयर मार्केट में स्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। आप सोचिए कि जहां रोज आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो जो शेयर मार्केट है वो कितना वोलाटाइल हो जाएगा। एक तो तूफान की तरह हो गया कि रोज ही हवा तेज हो रही है कम हो रही है, तेज हो रही है कम हो रही है, तो अर्थव्यवस्था में फिर स्थिरता नहीं रह जाएगी, शेयर मार्केट में स्थिरता नहीं रह जाएगी। रोज लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, फिर तो एक तरीके का सट्टा हो जाएगा। याद रखिए शेयर मार्केट सट्टा नहीं है, शेयर मार्केट को आप सट्टा मत मानिएगा, उसका नेचर भले ही आपको उस तरीके का दिखाई दे रहा हो लेकिन इनफैक्ट ये सट्टा नहीं। सट्टा का मतलब तो सारी चीजें अनुमान पर एकदम ही उस पर आधारित होते हैं जिसका कोई बेस ही नहीं होता, यहां ऐसा नहीं है। तो आप एक साल तक अगर रोक लेते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कितना हो गया एक साल, एक साल को समय से डिफाइन कर दिया लॉन्ग टर्म। इसमें एक और भी लॉन्ग टर्म है मित्रों, जिसको हम कहते हैं संपत्ति। जैसे मान लीजिए आपने जमीन खरीदी, आपने कोई मकान खरीदा, इसको आपको अगर आप इन्हें तीन साल बाद बेचते हैं, इसके लिए थ्री इयर्स रखा है, अगर आप इनको तीन साल के बाद बेचते हैं तो उस बेचने पर जो आपकी इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, राइट। तो मित्रों जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या जो इस फील्ड में काम करते हैं, देखिए जो इनकम टैक्स है उसका रेट आप जानते हैं तो मैक्सिमम 30% है, और ये जितने भी लोग इस फील्ड में काम करते हैं 30% के रेंज में आ चुके होते हैं, 30% के रेंज में होते हैं उनकी जो इनकम होती है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर किसी चीज को खरीदा और एक साल के बाद मैंने शेयर बेच दिया, तो उस पर जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए ₹1,00,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उस पर मैं कितना टैक्स देता अगर उसको एक साल से पहले बेच देता तो ₹30,000, और अगर एक साल के बाद में बेचता उसी रेट में बेचता हूं जिस रेट में कुछ दिन पहले बिक रहा था, तो मुझे अब इनकम टैक्स के वो ₹30,000 बच जाएंगे, बिना कुछ किए बच जाएंगे, राइट। तो आप देख रहे हैं कि बिना कुछ किए मुझे वो इनकम टैक्स बच के मैं बचत हो गई सामान्य तौर पर। तो मित्रों फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जल्दी जल्दी ना बेचूं, टाइम लूं, तो इससे स्थिरता आ जाती है। तो प्रॉपर्टी के मार्केट में भी स्थिरता आ जाती है और बट नेचुरल है कि शेयर मार्केट में भी स्थिरता आ जाती है। तो इससे जो अर्थव्यवस्था है हमारे सॉलिड तरीके से आगे बढ़ती है। याद रखिएगा मित्रों कि जो गोल्ड है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। हम तो अपनी पूंजी मानते हैं ना गोल्ड को, अगर मैंने गोल्ड खरीद करके रख लिया है तो इस गोल्ड को अगर मैं बेचूंगा तो उस पर सरकार का कोई छूट, सरकार की कोई छूट नहीं है। चूंकि सरकार की कोई छूट नहीं है इसीलिए फिर हम इसको पूंजीगत उस रूप में नहीं लेते हैं, टेक्निकली फिर हम उसे इस दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर प्री में ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से किन किन चीजों को पूंजीगत लाभ प्राप्त की छूट प्राप्त होती है, और उसमें एक है शेयर मार्केट, ओके कर दीजिए, सिक्योरिटी बॉन्ड ओके कर दीजिए, जमीन ओके कर दीजिए, और अगर सोना दिया हुआ है तो उसको काट दीजिए कि सोना पर उनको कोई पूंजीगत लाभ नहीं मिले, पूंजीगत लाभ का फायदा नहीं मिलेगा। तो मित्रों ये पहली खबर थी जो मैंने आपको डिटेल में बताई। जो दूसरी खबर थी मित्रों वो सुशासन को लेकर के थी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं उनके उनका जो जन्मदिन है 25 दिसंबर को, उसे हमारा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस के रूप में मनाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमेशा मैंने देखा कि गुड गवर्नेंस पर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है, मेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो यू शुड नो व्हाट इज गुड गवर्नेंस, आपको मालूम होना चाहिए कि इसके कौन कौन से तत्व हैं। इसके बाद मित्रों एक बेनामी संपत्ति के बारे में वक्तव्य आया है कि सरकार अब बेनामी संपत्ति एक्ट को बहुत ही मतलब यू कह लीजिए एक्टिव होकर के लागू करना चाह रही है, तो अब वक्त नहीं है, हम लोग बेनामी संपत्ति के बारे में कभी फिर बात करेंगे। तो दोस्तों न्यूज में इतना ही, जिसमें दो ये तीनों टॉपिक जैसा कि मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अभी आपके अभी जो फिलहाल एग्जाम जो होने हैं उनके लिए। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, आप इसे आपको इसकी जो बेसिक्स हैं वो समझ लेनी चाहिए। इसके बाद सुशासन क्या होता है, ये आपकी जानकारी में बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, है ना, सतही जानकारी नहीं। और फिर बेनामी संपत्ति ये क्या है, क्या एक्ट है, इसके बारे में हम लोग फिर कभी बातें करेंगे। मित्रों अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। दोस्तों आज न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स कोई खास नहीं है, दो तीन क्लिपिंग्स ही छोटी छोटी हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें एक जो क्लिपिंग है, क्लिपिंग्स है जनसत्ता की, इसको आप थोड़ा सा साहित्य कला संस्कृति के लिहाज से पढ़िएगा कि ग्राम्य कलाओं का विस्थापन, कि हमारे जो गांव की जो कलाएं हैं वो कैसे धीरे धीरे मर रही हैं, खारिज हो रही हैं। एक अच्छा आर्टिकल है, इसको आप संस्कृति से भी जोड़कर देख सकते हैं, हमारे जीवन मूल्यों से भी जोड़ करके देख सकते हैं, हमारी जीवन पद्धति से भी जोड़ करके देख सकते हैं, रेंज इसका काफी व्यापक है। तो ये टॉपिक जो है आपको साहित्य कला, जो कला संस्कृति जो आपके सिलेबस में है या ऐसे राइटिंग में काफी सहायक हो सकता है, तो उस लिहाज से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड का है, जो अभी हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सिलेक्ट किए, जो नियुक्त किए गए हैं, आपको मालूम है कि वरिष्ठता के सिद्धांत को छोड़ करके, वो कोई एस्टैब्लिश सिद्धांत नहीं था, उनको नियुक्ति दी गई है, उनसे दो जो सीनियर थे उन्हें नहीं बनाया गया है, उसको लेकर के देश में एक विवाद की स्थिति थोड़ी सी बनी हुई है, उस पर एक आर्टिकल है, आप उसे देख लीजिएगा। और एक मैं दे रहा हूं मित्रों जो इकोनॉमिक टाइम्स का है, कि किस तरीके से जो हमारे स्टार्टअप है उनके सामने अब अलग तरह का संकट आना शुरू हो गया है। इसमें मैं एक बात आपको ऐड करना चाहूंगा मित्रों, कि इससे पहले भी मुझे मालूम है कि जब मैंने इस तरह का एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था जिसमें हमारे फ्लिपकार्ट और ओला कैब के दोनों जो मालिक हैं उनकी बात बताई थी कि वो सरकार से अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें संरक्षण चाहिए और इस तरह से पूंजी को आप सीधे विदेशी पूंजी को अलाउ मत कीजिए क्योंकि उनसे टकराना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस संदर्भ में एक मैंने आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था बिजनेस स्टैंडर्ड का, आपको ध्यान हो शायद लास्ट वीक, उसी के कंटिन्यूएशन में ये मैं दूसरा प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उसमें भी बॉम्बे क्लब का नाम आया था, इसमें भी बॉम्बे क्लब का नाम आया है, लास्ट में आप देखेंगे तो बॉम्बे क्लब का नाम है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये बॉम्बे क्लब क्या है। दोस्तों ये बॉम्बे क्लब, बॉम्बे तो हम जानते हैं आप, हमारे देश का इंडस्ट्रियल हब है, औद्योगिक नगरी है, बड़े बड़े उद्योगपति वहीं हैं। तो बेसिकली बॉम्बे क्लब की दो तीन विशेषताएं थी, एक क्लब है समझ लीजिए जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उसके जो मेंबर्स हैं वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो भारत के अगर आप उद्योग के इतिहास को देखें या स्वरूप को देखें तो हमारे जो उद्योग हैं वो यूं कह लीजिए कि परंपरागत, जो उसका मालिकाना जो हक है वो एक तरीके से परंपरागत तरीके का है। परंपरागत तरीके का मतलब यह है कि खानदानी है, बिड़ला खानदान है ना, मोदी खानदान, इस तरह से वो टाटा घराना, आप इस तरह से कह लीजिए। तो ये इस तरह से है जो एक अपने उद्योग को परंपरावादी तरीके से चलाते हैं, उसमें कोई मॉडर्न वो नहीं है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और वो सब चला रहे हैं और जो मालिकाना हक है वो सब में बराबर है, इस तरह का नहीं है। वो जो है पूरी तरह से जो चलाते हैं वो एक तरीके से एक परिवार का कब्जा पूरे के पूरे उद्योग पर रहता है। और अभी तक जो हमारा उद्योग का स्वरूप था वो संरक्षणवादी था, सरकार उनको सपोर्ट करती थी। तो जब 1991 में जब सरकार ने इसको ओपन करना शुरू किया तो इनको डर लगा कि अगर हमारा ये संरक्षण वापस ले लिया गया तो हम बाहर वालों से कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे। तब उन्होंने, जो बॉम्बे क्लब के सदस्य थे, इन्होंने एक तरीके से जो उदारवादी नीति सरकार अपनाने जा रही थी 1991 में उसका विरोध किया था। यह है बॉम्बे क्लब, उद्योगपतियों का समूह, जो परंपरागत उद्योगपतियों का समूह था उसे हम बॉम्बे क्लब कहते हैं, यह आपकी जानकारी के लिए है। तो मित्रों अब मैं आता हूं ईमेल पर, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, धर्मराज मिश्रा, अमित कुमार, राकेश कुमार सिन्हा, आनंद कुमार, रजत कुमार बोलपुर से, अरुण चौधरी, राहुल उपाध्याय न्यू दिल्ली से, ममता चहर, मोहित तनेजा, मनोज शर्मा मुजफ्फरनगर से, चिराग सोलंकी, सिमरनजीत सिंह लुधियाना से, पायल प्रजापति गुजरात से, दीपक कुमार, सुमित कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, कमलकांत, मितेश देसाई, शाहवाज हुसैन, अंकुर कानपुर से, अंकुर वार्ष्णेय कानपुर से, रजनीकांत तिवारी और हेतराम प्रजापत जयपुर से। और आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।